Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वागुंसस्तानोवर् व्यासेमदेवहितं यदायुः शस्ति न इन्द्रो बृधश्रवाः शस्ति नः पूखा विश्ववेदाः शस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः शस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमात्मा और गुरुजनों की असीम कृपा से हम लोग विचार कर रहे हैं अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग के मांडुक्य उपनिषद के विषय में। साधक जहां पहुंचना चाहता है उसमें दो प्रकार की उपाधि जुड़ी है, एक है नाम, दूसरा है रूप है। तो जो साधक का प्राप्तव्य है वो तो नाम से भी रहित है, रूप से भी रहित है, स्वरूपतः। फिर उसको कैसे प्राप्त करेगा, इस प्रकार की जिज्ञासा होती है साधक के अंतःकरण में। तो इस जिज्ञासा के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए यहां पर प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, अवस्था त्रय का परीक्षण। तीन प्रकार की अवस्था होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और इसमें व्यवहार करता है जीव। व्यवहार करता है, कोई भी व्यवहार होता है अध्यास मूलक होता है, जिसको भगवान भाष्यकर ने बताया सत्यानृते मिथुनी कृत्य अहम मम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। अहम करता है और मैं करता है, ये मम करता है, ये अध्यास के कारण होता है। अध्यास होने से विवेक आदमी को नहीं हो पाता है कि शरीर से मैं भिन्न हूं, अवस्था त्रय का मैं साक्षी हूं। लेकिन विवेक तो करना ही होगा, परीक्षण तो करना ही होगा, इसलिए यहां पर परीक्षण रूपी यहां पर प्रक्रिया है। तो पहले अध्यारोप कर दिया, जागृत अभिमानी का नाम हो गया विश्व, सपनों का तेजस, सुसुप्ति का श्रोता की ओर से ऐसा उत्तर आने से अच्छा लगता है वक्ता को भी, कि मालूम पड़ता है कि लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये हो गया अध्यारोप, अध्यारोप हो गया। यहां पर भगवान भाष्यकार सप्तम मंत्र में शंका उठाते हैं कि चौथा जो चेतन उसका नाम क्या हो गया, तुरीय, उसी का तो ज्ञान कराना है साधक को। लेकिन तीन अवस्था का अहिमानी चेतन कह दिया विश्व तेजस प्राज्ञ है ना, तो इसकी अपेक्षा जो होगा वो तो चौथा हो गया है ना। फिर यहाँ पर नांतक प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम कह करके है ना निषेध करने की क्या जरूरत है, समझ में ना। तीन अवस्था वाला तीन चेतन हो गए है ना, इससे अतिरिक्त जो होगा वो तो चौथा हो जाएगा। इस चौथा चेतन को कहने की क्या आवश्यकता है फिर, अरे तीन कह दिया तो जो अतिरिक्त होगा वो क्या होगा, चौथा ही हो जाएगा है ना, ये शंका उड़ सकती है। फिर ये जो मंत्र यहाँ पर आरंभ कर दिया श्रुति ने नांत प्रज्ञम कह करके है, ये तो क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, निरर्थक हो गया, ये शंका है भगवान भाष्यकार कह दिए। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं, कहते हैं सर्पादि विकल्प प्रतिषेधेन एव रज्जु स्वरूपम प्रतिपत्ति। देखो जैसे एक रस्सी है, रस्सी के अज्ञान से किसी को सर्प दिखता है, किसी को भूछिद्र दिखता है, किसी को जलधारा दिखती है ना। ये जो तीन प्रकार की वस्तु दिख रही है, एक रस्सी से भिन्न है ही नहीं, समझ में ना। तीनों का जब आपने निराकरण कर दिया, ये सर्प भी नहीं, जलधारा भी नहीं, भूछिद्र भी नहीं, तो किसका ज्ञान हो गया, रस्सी का ज्ञान हो गया। रस्सी ही अनेक रूप से दिखती है, इसी प्रकार से यहां पर भी समझना है। जो तीन प्रकार की अवस्था का अहिमानी चेतन हो गया विश्व तेजस प्राज्ञा है ना, इसका मूल क्या है, मूल तुरीय है, समझ में ना। ये तुरीय चेतन ही अनेक रूप से प्रतिभास हो रहा है ना, स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ अध्यास करके, संसर्ग अध्यास करके। आपको बता दिया संसर्ग अध्यास क्या है, सत्य का मिथ्या के साथ जब अध्यास होता है तो कौन सा अध्यास है, हाँ संसर्ग अध्यास होता है, समझ में आएगा ना। रस्सी का अध्यास होता है सर्प के साथ, कौन सा अध्यास, संसर्ग अध्यास है, हो गया ना। अयम सर्प, अयम और सर्प एक हो जाते हैं, अयम किसका अंश है, रस्सी का अंश है, सामान्य अंश है, समझ में आ गया ना। और जब मिथ्या का जब संसर्ग होता है सत्य के साथ, सत्यानृत मिथुनी करके कह दिया ना भगवान भाष्यकार ने, दोनों को मिला करके व्यवहार होता है भैया, एक में व्यवहार नहीं हो सकता है ना। केवल चेतन को लेकर कैसे व्यवहार करोगे, नहीं कर सकते। और केवल मिथ्या को लेकर व्यवहार नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अरे मिथ्या में सत्ता कहां से आएगी, मिथ्या में सत्ता कहां से आएगी, सत्ता किसकी होती है, अधिष्ठान की, अधिष्ठान सत्य होता है, बात पढ़ में आई ना। तो मिथ्या वस्तु का जब अध्यास होता है सत्य वस्तु के साथ, कौन सा अध्यास हो जाएगा, स्वरूप भी हो जाता है और संसर्ग भी हो जाता है, समझ में आ गया ना। सर्प का जब इदम अंश के साथ अभ्यास हो जाएगा, वो स्वरूप भी हो जाएगा और संसर्ग भी हो जाएगा। स्वरूप का मतलब स्वरूप से सर्प मिथ्या है, ये हो गया स्वरूप अध्यास, ठीक है ना। आज संसर्ग क्या है, उसका संबंध भी मिथ्या है, सर्प का संबंध इदम के साथ किसी प्रकार का नहीं हो सकता है, जैसे चित्र के साथ पर्दा का कोई संबंध है क्या? बन ही नहीं सकता है ना। ये हो गया संसर्ग अध्यास, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक तुरीय चेतन का ही अध्यास हो जाता है अवस्था तीन के साथ, संसर्ग हो गए, स्वरूप नहीं हो जाएगा। स्वरूप यदि मानोगे तो क्या हो जाएगा? तुरीय चेतन मिथ्या हो जाएगा। समझ में आ गया ना। जैसे सर्प के साथ रस्सी के साथ संबंध हुआ भैया, स्वरूप अध्यास भी हो गया तो मिथ्या हो जाता है सर्प। इसी प्रकार से तुरीय चेतन का अध्यास नहीं हो सकता है स्वरूपतः अवस्था के साथ, अवस्था के साथ अवस्था जनित व्यवहार के साथ भी। समझ में आया ना। तो संसर्ग अध्यास हो जाने से अवस्था के साथ और तीन शरीर के साथ, स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीनों के साथ अध्यास हो जाता है। तो अध्यास हो जाना से उसका धर्म भी अपने में आ जाएगा, किसमें? चेतन में, हो गया ना। आम मनुष्य आम ब्राह्मण, ये देखो आ गया ना। शरीर को क्या मान लिया? मैं मान लिया, तो फिर शरीर का धर्म आ गया। आत्मा ब्राह्मण है कि शरीर ब्राह्मण है? कौन ब्राह्मण है? शरीर ब्राह्मण है भाई, आत्मा तो है नहीं ब्राह्मण। आत्मा ब्राह्मण है क्या? आत्मा यदि ब्राह्मण होता तो स्वप्न में फिर क्षत्रिय नहीं बनता। कोई ब्राह्मण है मान लो, स्वप्न में चला गया तो क्या मान लिया? अपने को क्षत्रिय मान लिया। तो आत्मा का धर्म है क्या? ब्राह्मण होता तो हमेशा होता है ना। जैसे आत्मा का स्वाभाविक धर्म हो गया सत्ता, सत मान लीजिए, है ना, उसका अपलाप कभी भी नहीं होता है। स्वरूप का अपलाप नहीं होगा ना। इसी प्रकार से आत्मा का कोई भी धर्म नहीं। ये सब किसका होता है? उपाधि का होता है। तो यहां पर शंका उठा दिया पूर्व पक्षी ने, जब तीन अवस्था के अभिमानी चेतन को जब कह दिया विश्व तेजस प्राज्ञा करके, फिर तुरिया को कहने की क्या जरूरत है? तीन की अपेक्षा चौथा कौन होगा? वो तो तुरिया होगा, हो गया कि नहीं। तो कहते कि ये चौथा जो पदार्थ ये भिन्न नहीं है, हो गया ना। जो विश्व तेजस प्राज्ञा है, हाँ, ये उपाधि को लेकर के अलग अलग हो गया है, लेकिन मूल तो कौन है? तुरीय चेतन। एक रस्सी ही सर्प है, जलधारा है, भू छिद्र के रूप से दिखाई देती है, उसी प्रकार एक तुरीय चेतन ही अनेक प्रकार से दिखती है, तुरीय आत्मा उपाधि को लेकर के। इसलिए निषेध करना आवश्यक है। सर्पादि का निषेध करने से रस्सी जो अधिष्ठान है उसका भान हो जाता है, है ना। नायम सर्प अपितु यम रज्जु, रज्जु का ज्ञान हो गया। इसलिए यहाँ पर तीन अवस्था का जब निराकरण कर देंगे, अपवाद बोलते हैं ना, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, यही प्रक्रिया है। निष्प्रपंच कौन है? तुरीय चेतन। तुरीय चेतन उसका भान करने के लिए भाई ये अयम घट ऐसा तो नहीं कर सकते ना। बोलो, आत्मा का ज्ञान कैसे कराओगे, है ना। ये इदम का विषय तो है ही नहीं, क्यों नहीं है? दृश्य नहीं है। जड़ पदार्थ को इदम तया आप उपदेश कर सकते हो, भाई ये चेतन को तो नहीं कर सकते। यही उपाय है अध्यारोप अपवाद। पहले अध्यारोप कर दिया विश्व तेजस प्राज्ञ करके, तो अभिमानी चेतन हो गया, ठीक है। और उपाधि का निराकरण कर दिया तो, निषेध कर दिया तो कौन शेष रहेगा? अरे बिना अधिष्ठान से निषेध होता है। बोलो, रस्सी यदि न हो तो सर्पादि का निषेध कैसे करोगे? हाँ, जितने भी भ्रांत पदार्थ है सर्पादि, उसी का निराकरण कर दिया तो शेष कौन रहेगा? अधिष्ठान रहेगा। और अधिष्ठान का यदि करोगे तो उसका साक्षी कौन होगा? समझ में ना। अधिष्ठान का यदि आप भाई अपलाप करोगे, निषेध करोगे, तो निषेध का साक्षी कौन होगा? जो साक्षी है ना, वही तो आत्मा है। इसलिए आपके शून्यवादी लोग क्या करते हैं, हाँ, अधिष्ठान को भी नहीं मानते, अधिष्ठान भी शून्य है, ये तुम्हारा नाम रूप भी शून्य है, हाँ, और उसका अधिष्ठान भी शून्य है, हाँ, बात जतेगी? अरे शून्य कैसे कहोगे, हाँ, तो आपने जाना कैसे कि सब कुछ शून्य है, हो गया ना? तो जानने वाला साक्षी कोई होना चाहिए कि नहीं, हाँ? जानने वाला भाई, इससे पहले शून्य था, जगत सृष्टि से पहले, इसमें क्या प्रमाण है, हाँ ना? कोई प्रमाण है क्या? इस प्रमाण का साक्षी कौन होगा बताओ? नहीं होगा ना भाई, है ना? तो बिना साक्षी से आप तो सिद्ध कर ही नहीं सकते, है ना? तो आपके क्षणिक विज्ञान वाले ये बोलते हैं, हाँ, ये जितने भी दिखाई दे रहा है नाम रूप, ये अंदर का ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, वो बोलता है। ये तो हम भी मानते हैं वेदांती, है ना, कि सर्वम खुलेदम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है, विज्ञानम आनंद ब्रह्म, तो विज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है यही दिखाई देता है बाहर, ये तो हम भी मानते हैं, है ना, लेकिन वास्तविक इसकी सत्ता ही नहीं है, ये हम नहीं मानते हैं। कैसा है फिर? माइक, माइक है, इसकी सत्ता मान लो, व्यवहारिक मान लो, प्रातिभाषिक मान लो, है ही नहीं बंध्या पुत्री की तरह, ये बात तो नहीं जतेगी, कैसे जतेगी, है ना भाई? देखो, ज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ वस्तु है ही नहीं बोलोगे, है ना, तो हाथ लगाओ अग्नि में, हाथ नहीं जलेगा, हा? तो अग्नि है कि नहीं? और बर्फ के ऊपर हाथ रखो तो ठन लगता है, तो बर्फ है कि नहीं? और भले ही मिथ्या मान लो इसको, लेकिन व्यवहारिक तो है ही, है ना? और वो लोग क्या बोलते हैं कि ज्ञान तुम्हारा क्षणिक है, ज्ञान तुम्हारा क्षणिक, एक ज्ञान नष्ट होता रहता है, प्रथम क्षण में ज्ञान उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में दूसरा ज्ञान हो जाता है, प्रथमकालीन ज्ञान नष्ट हो गया, तो नष्ट हो गया तो आपने जाना कि नहीं जाना? अरे ज्ञान यदि नष्ट हो, हाँ, उसको जानेगा कौन? जानने वाला कोई होना चाहिए ना, हाँ? तो जो जानेगा वही तो हमारा क्या है, साक्षी है, वही हमारी आत्मा है, समझ में ना? इसलिए आत्मा क्षणिक है, ज्ञान क्षणिक है, ये बात तो नहीं जचती है, हो गया ना? फिर उसका भान कैसे होगा, आत्मा का भान? आत्मा का भान के लिए यही प्रक्रिया है, अध्यारोप है और अपवाद है। पहले अध्यारोप कर दिया तीन अवस्था को लेकर के, और यही तीन अवस्था का जब निराकरण कर देंगे, हैं, तो जो शेष रहेगा अधिष्ठान, वो कौन है? तुरीय। ये तुरीय चेतन ही अपनी माया को लेकर के, हैं, अनेक रूप से वो दिखता है। एक तुरीय चेतन से ना कोई विश्व भिन्न है, ना कोई तेजस है, ना कोई प्रज्ञा, यही यहाँ पर सप्तम मंत्र में प्रक्रिया है, इसको कहते हैं अपवाद प्रक्रिया। एक हो गया विधि मुख, दूसरा हो गया निषेध मुख, और निषेध मुख मतलब क्या? अभाव रूप धर्म पुरस्कारेण वस्तु प्रतिपादनम निषेध मुखम, अभाव रूप धर्म आ गया, कैसे? न अंत प्रज्ञ में कह दिया, ये अंत प्रज्ञ भी नहीं है। अंत प्रज्ञ जो है किसका विषय था? स्वप्न अहिमानी तेजस को कौन सा ज्ञान होता है? हाँ, अंदर का ज्ञान है। स्वप्न में जाएंगे तो बाहर का दिखता है क्या? बाहर जैसा दिखता है, लेकिन बाहर है ना, मन कहीं जाता नहीं है, कोई इंद्रियां बाहर तो जाती नहीं है, हो गया ना? इसलिए नान्त प्रज्ञ कहने से किसका निराकरण हो गया भाई? तेजस, ठीक है ना? तो ये अवस्था भी कल्पित है, स्वप्न अवस्था किसमें कल्पित है? जिसमें कल्पित है वो हो गया तुरीय। न बहिष्प्रज्ञम, हैं, बाहर का ज्ञान किस अवस्था में होता है? जागृत में होता है, है ना? इसलिए जागृत अहिमानी, हैं, क्या भी स्वरूप कौन हो गया? तुरीय। जागृत भी उसी में कल्पित है, किसमें? तुरीय में। और न उभयतः प्रज्ञम, एक अंतराल की अवस्था मानते हैं कुछ लोग, जागृत स्वप्न के बीच में एक अवस्था होती है, अंतराल अवस्था, है ना? तुम उसके भी साक्षी हो, समझ में आया ना, इसलिए कहते हैं न उभतः प्रज्ञम और न प्रज्ञान घनम। इसको पूरा करना है इसलिए मैं इस कर रहा हूं जल्दी से। न प्रज्ञान घनम कह दिया, प्रज्ञान घन जागृत कालीन ज्ञान, स्वप्न कालीन ज्ञान का घनीभूत कहाँ पर होता है? सुसुप्ति में। ज्ञान होता है कि नहीं होता है? ज्ञान तो होता नहीं सुसुप्ति में, है ना, जागृत कालीन स्वप्न कालीन का, लेकिन उसका संस्कार रहता है। अरे संस्कार नहीं मानोगे तो उठने के बाद भी संशय हो जाएगा कि नहीं, पूछेगा कि आप कौन है, माता को पूछना होगा ना कि आप देवी कौन है ना। इसलिए क्या लगता है कि संस्कार सुसुप्ति में भी रहता है, कारण अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में सारा संस्कार रहता है। इसलिए कह दिया न प्रज्ञान घनम है, ये भी कैसा है? कल्पित है। तुरीय में सुसुप्ति अवस्था भी कल्पित है और ये वास्तविक ज्ञाता भी नहीं है स्वरूप से, हो गया ना। ये तुरीय चैतन्य वास्तविक प्रमाता भी नहीं है, समझ में ना। क्यों प्रमाता नहीं है? अरे बाहर का विषय वास्तविक हो तब ना प्रमाता होगी जी, हो गया ना। बाहर का विषय तो दिखता है ज्ञानी को भी, लेकिन ज्ञानी को हमेशा एक ज्ञान रहता है, दिखाई देने पर भी एक अधिष्ठान से ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, हो गया ना। इसलिए आत्मा वास्तविक क्या नहीं है? साक्षी भी नहीं है, दृष्टा भी नहीं है। दृष्टा कब तक है? दृष्टापना कब तक रहेगी? दृश्य जब तक है, समझ में ना। तो इसी अभिप्राय से यहां पर कह दिया न प्रज्ञम, है ना, वास्तविक ये प्रमाता भी नहीं, ये सब कल्पित है। प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, जिसको त्रिपुटी बोलते हैं, ध्यान ध्याता ध्येय, ये त्रिपुटी हो गया। ये त्रिपुटी भी किस अवस्था में रहेगी? अज्ञान अवस्था में रहेगी, द्वैत अवस्था में रहेगी, है ना, अद्वैत अवस्था में नहीं, है ना। चित्र को यदि आपने पर्दे के रूप से देखा तो अद्वैत हो गया, सिनेमा के पर्दे में चित्र दिखता है, अरे पर्दा ही तो चित्र के रूप से दिखता है ना, हो गया कि नहीं। हाँ, चित्र को चित्र के रूप से आपने देखा तो द्वैत हो गया, है कि नहीं। और चित्र को अपने पर्दा के रूप से देखा तो क्या हो गया? अद्वैत हो गया, हो गया ना। इसलिए यहाँ पर इस अभिप्राय से कह दिया एक ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सतो ही माया जन्म, गौड़पाद भगवान बोलते हैं। ये सत ब्रह्म यही दिखता है, किसको लेकर के? माया को लेकर के, है ना। इसलिए वास्तविक ये नहीं है। तो कहते हैं कि देखो ये दृश्य भी नहीं हुआ और दृष्टा भी नहीं हुआ, कि उसको पे जड़ मान लो, है ही नहीं, जड़ मान लो, समझ में ना। कहते कि ऐसा नहीं है ना, ये आत्मा कभी भी जड़ नहीं हो सकती है, कि आत्मा का भान तो हमेशा होता है, आत्मा के अस्तित्व का अपलाप कर ही नहीं सकते, है ना। कोई कर सकता है कि आत्मा के अस्तित्व का अपलाप? अरे अपलाप का फिर साक्षी कौन हो जाएगा? तो साक्षी तो आपको मानना ही होगा ना, अपलाप भी आप नहीं कर सकते, है ना। इसलिए कह दिया न प्रज्ञम, ये जड़ भी नहीं, ये लेकिन बोल दिया ना, सचित आनंद, सत्य भी है और ज्ञान भी है, हो गया ना। कुछ लोग तो भाई दूसरे को भी सत्य मानते हैं कि नहीं, है ना, आकाश को भी सत्य मानते हैं, काल को ये मानते हैं, ये सब सत्य मानते हैं, और आत्मा को सत्य तो मानते हैं कुछ लोग, लेकिन चेतन नहीं मानते हैं कुछ लोग, कहते हैं कि ऐसी बात नहीं जचेगी, आत्मा सत्य हो और ज्ञान ना हो ये बात जचेगी? नहीं जचेगी। अरे आप स्वयं कोई चाहता है कि मैं जड़ हो जाऊं? विचार करके देख लो, है कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं जड़ हो जाऊं? जड़ होने के लिए कोई प्रयत्न करेगा? कोई नहीं करेगा ना। मैं बेहोश हो जाऊं तो मेरे शरीर में चंदन लगाओ, कोई बोलेगा? मुझे आनंद हमेशा मिले और ज्ञान पूर्वक मिले, है कि नहीं। इस सभी के मन में नैसर्गिक अभिलाषा रहती है, इसलिए आत्मा जड़ नहीं हो सकती है। आत्मा सत्य भी है, आत्मा ज्ञान भी है और आत्मा आनंद रूप भी है ना। इसलिए यहाँ पर जड़ता का निराकरण कर दिया, न अप्रज्ञम, अप्रज्ञ हो गया जड़, ये जड़ भी नहीं है, आत्मा चेतन है। कहीं से चेतन आत्मा में आता हो, चैतन्य मन का संबंध होने से, ऐसा नहीं। मन का संबंध हो या चक्षु का संबंध हो या ना हो, आत्मा में चैतन्य तो है ही, सर्वदा है ना। जैसे नए लोग मानते हैं ना, मन का संबंध हो जाता है तो आत्मा में चैतन्य आ जाता है, हो गया ना। ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि देखो सुसुप्ति में भी मन का व्यापार नहीं होता है, होता है फिर भी आत्मा का बहन होता है कि नहीं। उठने के बाद तब ना बोलता है कि अहम किंचित ना वेदिशम सुखम अस्वापसम, बड़े सुख से सोया, कुछ नहीं जाना। तो जाना तो है कि नहीं, किसको जाना, किसको जाना? अरे भाई सुख को जाना, अज्ञान को जाना और अहंकार वृत्ति को जाना, तीनों को जाना आत्मा में, साक्षी से अनुभूत हो गया। इसलिए वहां पर तो साक्षी है ही, है ना, किसी से प्रकाशित होकर के नहीं, स्वयं प्रकाश रूप है वो। अच्छा, अब कहते हैं भाई इनिशियत मुग्ना है, अदृष्टम कह दिया, अदृष्टम ये ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है। आत्मा दिखती है चक्षुरादि इंद्रिया से, वो दिखती नहीं है। जो सत्य पदार्थ है कि नहीं, वो कभी दिखता नहीं है, कैसे दिखेगा? और जो सत्य पदार्थ नहीं है वो दिखता है। आत्मा किससे दिखेगी? ना चक्षुरादि से दिखेगी, ना मन से, किसी से आत्मा दिखती नहीं। क्यों नहीं दिखती है? आत्मा तो भाई कैसा है, पदार्थ स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश जो होता है वो किसी से प्रकाशित नहीं होता, इसी का नाम स्वयं प्रकाश है, सही में ना। बोलेंगे अपने आप को जानता होगा, क्यों जी? आप अपने आप को जानते हो नहीं जानते हो? जानते हैं ना, तो फिर आप प्रकाश्य हो गए, फिर प्रकाश्य हो गए ना है? तो जो प्रकाश होगा वो प्रकाश्य तो होगा नहीं, जो दृष्टा होगा वो कभी तो दृश्य होगा नहीं, वो किसी से भी दृश्य नहीं है, आप समझ गए नहीं, अपने से भी दृश्य नहीं है वो। अरे भाई आप दूसरे के कंधे पर चढ़ सकते हो, अपने कंधे के ऊपर कैसे चढ़ोगे, आप समझ गए नहीं। संप्रकाश का अर्थ ये होता है, किसी से प्रकाशित नहीं और अपने आप को प्रकाशित न करके, जिसका भान हमेशा होता है उसी को कहते हैं संप्रकाश, हो गया ना। क्योंकि एक में प्रकाश भी मानोगे और एक में प्रकाशक भी मानोगे तो विरोध हो गया ना, स्वप्रकाशकत्व स्वप्रकाशकत्व में विरोध हो जाता है। दूसरे का प्रकाशक तो है लेकिन स्वयं का प्रकाशक नहीं है आत्मा, कोई जरूरत नहीं है, उसका भान तो हमेशा होता है ना। हाँ विरोध हो जाएगा ना, इसी बात को पकड़ में रखिएगा, स्वप्रकाश का अर्थ ये होता है। तो कहते ज्ञानेन्द्रिय का विषय भी नहीं है, अदृष्टम कह दिया, अव्यवहार्यम, और व्यवहार किसका होता है? जड़ का व्यवहार होता है, अर्थ क्रियाकारित्व। व्यवहार कितने प्रकार के होते जानते हैं? चार प्रकार के होता है, अभिज्ञा, अभिवदना, हान उपादान, अर्थ क्रियाकारी। अभिज्ञा मतलब बोलना, ये ज्ञान, अभिज्ञा मतलब ज्ञान रूप व्यवहार। ज्ञान रूप व्यवहार दूसरे का होता है, आत्मा का ज्ञान किसी से होता नहीं, इसलिए अभिज्ञान रूप मतलब ज्ञानात्मक व्यवहार भी नहीं है आत्मा में, समझ में है ना। और अभिवादन मतलब बोलना, है ना, ये व्यवहार भी दूसरे का होता है, समझ में है ना, है ना। और हान उपादन मतलब छोड़ना और ग्रहण करना, और अर्थ क्रिया मतलब जल आदि जो पीते हैं, ये सब जो जितने भी करते हैं, ये सब क्या है? अर्थ क्रिया। ये चारों व्यवहार से वो रहित, व्यवहार का साक्षी है ये, हो गया ना, लेकिन स्वयं आत्मा का व्यवहार नहीं, ठीक है। तो इसलिए कह दिया अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, है ना, ये कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है, हो गया ना, ये आत्मा को कंधे पर चढ़ा करके नहीं ले सकते आप, हो गया ना। किसको चढ़ा कर लेंगे? शरीर को लेंगे, शरीरी को नहीं, समझ में ना। हाँ, जैसे आप घाट को लेकर जा सकते हैं, लेकिन घाट में रहने वाला आकाश को लेकर थोड़ी जाएंगे। अरे जहां जाएंगे तो वहां पर आकाश पहले से है,